नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं।
जी, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर।
हाँ, उनकी एक बहुत ही प्रखर लेखनी से निकला एक अध्याय है, ईश्वरवाद का विश्लेषण।
और इसका उद्देश्य सिर्फ ईश्वर के बारे में जानना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि ईश्वर की जो अवधारणा है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, परिवार को सुसंस्कृत बनाने के लिए और समाज की उन्नति के लिए एक मनोवैज्ञानिक आधारशिला का काम कैसे करती है।
बिल्कुल।
तो पूज्य गुरुदेव इसके चार मूल तत्व बताते हैं और पहली बार में ये बड़े पारंपरिक से लगते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, जैसे पहला कि ईश्वर सब कुछ जानता है और शक्तिशाली है।
दूसरा कि वो खुश हो तो सुख समृद्धि स्वर्ग मोक्ष सब देता है
और नाराज हो तो कष्ट भी देता है, दैविक दैहिक भौतिक हर तरह के।
अप्रसन्न। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ मतलब शाब्दिक बातें हैं या इनके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है?
और वही रहस्य आज हम खोलने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए पहले तत्व से ही शुरू करते हैं। ईश्वर सब कुछ देख रहा है, हमारे गुप्त कार्यों को, यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी। ये सुनने में तो बहुत आम बात लगती है।
लगती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव इसके पीछे जो तंत्र है उसे एक बहुत शक्तिशाली नाम देते हैं।
क्या नाम देते हैं?
मानसिक शासन व्यवस्था।
मानसिक शासन व्यवस्था?
हाँ, ये कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। सोचिए, ये विश्वास कि कोई हमें हर पल देख रहा है, ये हमारे मन पर एक अदृश्य पुलिस की तरह काम करता है।
एक अदृश्य पुलिस, ये तो कमाल की उपमा है। मतलब धर्म का कोई बाहरी ढांचा नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठा एक पुलिस वाला
जो हमें गलत करने से रोकता है।
ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है।
बिल्कुल। गुरुदेव इसका एक बहुत व्यावहारिक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जहां पुलिस थाना पास होता है या जहां पुलिस का दबदबा होता है वहां चोर उचक के ज्यादा उपद्रव नहीं मचाते।
सही बात है।
लेकिन सुनसान और दूर दराज के इलाकों में जहां कानून का डर कम होता है वहां अपराध बढ़ जाते हैं। हमारा मन भी तो एक ऐसा ही इलाका है।
हाँ।
जब उसमें ये विश्वास मजबूत होता है कि कोई देखने वाला है तो इंसान अकेले में भी पाप करने से डरता है।
और अगर ये विश्वास कमजोर पड़ जाए तो जब उस अदृश्य पुलिस का डर ही ना रहे तब क्या होता है? पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए मानसिक अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया है।
हाँ, और इसका मतलब है कि इंसान की पार्श्विक प्रवृत्तियां
मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट्स,
हाँ वही, वो उस पर हावी हो जाती हैं। जब निगरानी का डर खत्म हो जाता है तो अनुशासन भी खत्म हो जाता है। गुरुदेव एक और जबरदस्त उदाहरण देते हैं।
बताइए।
एक बंदर, वो किसी छोटे बच्चे के हाथ से तो रोटी छीनकर भाग जाएगा।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन किसी बलवान हट्टे कट्टे पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्यों?
क्योंकि उसे डर है।
उसे पता है कि वो शक्तिशाली आदमी उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। ईश्वर पर विश्वास ठीक उसी बलवान पुरुष के डर की तरह काम करता है। ये हमारे अंदर के बंदर को काबू में रखता है।
वाह। तो इसी वजह से गुरुदेव केवल बाहरी दिखावे को, जैसे बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगाना या गले में कई तरह की मालाएं पहनने को पाखंड कहते हैं।
हाँ, क्योंकि असली चीज तो अंदर का विश्वास है, बाहर का दिखावा नहीं।
सही।
वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं। उनके अनुसार इन बाहरी चिन्हों से ईश्वर की एक बहुत धुंधली, एक अस्पष्ट सी तस्वीर ही मन में बनती है। ये एक ऐसी चौकीदारी की तरह है जो सो रही है।
और जब निगरानी ही कमजोर हो
तो मन की अंधेरी गलियों में पार्श्विक वृत्तियां मनमानी करती रहती हैं। इसलिए मजबूत मानसिक शासन के लिए ईश्वर की एक स्पष्ट और शक्तिशाली छवि मन में होना जरूरी है।
ठीक है, तो ईश्वर एक अदृश्य शासक है, ये सिद्धांत तो समझ आया। ये हमें गलत काम करने से रोकता है, लेकिन अच्छे काम करने की प्रेरणा कहाँ से आए?
और यहीं पर दूसरा और तीसरा तत्व आता है, स्वर्ग का इनाम और कष्टों का डर। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा बच्चों जैसा नहीं लगता कि अच्छा काम करो तो टॉफी मिलेगी, बुरा करोगे तो सजा?
आपका सवाल बहुत वाजिब है और पूज्य गुरुदेव भी इसे स्वीकार करते हैं। वो इसे प्रलोभन ही कहते हैं।
प्रलोभन?
हाँ, पर इसे नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे समझाते हैं कि ये मनुष्य के पशु स्वभाव को सही दिशा में ले जाने के लिए एक जरूरी मनोवैज्ञानिक उपकरण है।
जैसे एक किसान
हाँ
जिद्दी बैल को घास का लालच दिखाकर अपने पीछे चलाता है, वैसे ही धर्म ग्रंथों में दिए गए सुख और वैभव के वर्णन, जिन्हें महात्मिक कहा जाता है,
हाँ,
आम इंसान को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
मतलब ये कहानियाँ एक तरह से साइकोलॉजिकल नज है, जैसे हम बच्चों को कोई अच्छी आदत सिखाने के लिए करते हैं।
बिल्कुल। गुरुदेव का माँ और बच्चे वाला उदाहरण इसी बात को एकदम साफ कर देता है।
वो क्या है?
एक माँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए ये नहीं समझाती कि इसमें कैल्शियम है, वाइटामिन है, प्रोटीन है।
नहीं, ये सब तो बच्चे के बिल्ले पड़ेगा ही नहीं।
हाँ, वो बस इतना कहती है, मेरा राजा बेटा, दूध पीलो तो बड़े होकर राजा बनोगे, हाथी घोड़े मिलेंगे। ये प्रलोभन उस वैज्ञानिक तर्क से कहीं ज्यादा असरदार है।
ये तो वैसा ही है जैसे आज के पेरेंट्स कहते हैं कि सब्जी खा लो तो तुम्हें आधे घंटे के लिए फोन मिलेगा।
एकदम सही, सिद्धांत तो वही है। ये अविकसित मस्तिष्क को प्रभावित करने का सबसे कारगर तरीका है। गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे, सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में धन आएगा,
या तुलसी की पूजा करने से लड़कों को अच्छी दुल्हन मिलेगी।
ये सब उसी राजा बेटा वाले प्रलोभन की तरह है। ये उस गाड़ी को एक धक्का देने जैसा है जो कीचड़ में फंस गई है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या लोग इन प्रलोभनों को ही सब कुछ नहीं समझ बैठते कि बस पूजा कर लो और कर्म करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा?
बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये।
ये तो कर्म के सिद्धांत को ही कमजोर करता है।
और गुरुदेव इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। विसाफ कहते हैं कि कर्म करने से ही सुख मिल सकता है। ये प्रलोभन कर्म का विकल्प नहीं है,
बल्कि कर्म करने की प्रेरणा है।
हाँ, वो समझाते हैं कि शास्त्रों में कई जगहों पर ईश्वर शब्द का सीधा सीधा अर्थ कर्म ही होता है। तो जब कहा जाता है कि ईश्वर सुख देता है, तो उसका गहरा अर्थ है कि कर्म सुख देता है।
अच्छा,
ये प्रलोभन सिर्फ शुरुआती धक्का है। एक बार गाड़ी चल पड़े तो धक्का हटा लिया जाता है। कोई ये सोचे कि सिर्फ भजन करने से उसे वो सफलता मिल जाएगी जो दिन रात मेहनत करने वाले को नहीं मिलती, तो ये सोचना ही तर्कहीन है।
ठीक है, तो ईश्वर एक अदृश्य शासक है और स्वर्ग नरक के प्रलोभन हमें सही रास्ते पर लाने के लिए है। लेकिन यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल आता है, जो चौथा तत्व है,
कि ईश्वर प्रसन्न और अप्रसन्न कैसे होता है।
हाँ, अगर ईश्वर निष्पक्ष है, समदर्शी है, तो वो किसी की पूजा से खुश या किसी के पाप से नाराज कैसे हो सकता है? यह तो उसे हम इंसानों जैसा बना देता है
जो चापलूसी पसंद करते हैं।
हाँ, इस विरोधाभास को गुरुदेव कैसे सुलझाते हैं?
और यही उनके विश्लेषण का सबसे गहरा और वैज्ञानिक हिस्सा है। वे कहते हैं कि ईश्वर का प्रसन्न या अप्रसन्न होना एक अलंकालिक भाषा है, एक मेटाफर है।
मेटाफर?
हाँ, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अच्छा या बुरा महसूस हो। इसका असली उद्देश्य मनुष्य के मन को साधने और नई अच्छी आदतें बनाने के विज्ञान से जुड़ा है।
नई आदतें बनाने से? ये कैसे काम करता है? मतलब रोज पूजा करने का, आदत डालने के विज्ञान से कोई लेना देना है?
हाँ, सीधा लेना देना है। पूज्य गुरुदेव यहाँ तक कि पश्चिमी मनोविज्ञान के शोध का भी हवाला देते हैं। वे डॉक्टर हंटर के अनुसंधानों का जिक्र करते हैं।
एक मिनट, डॉक्टर हंटर, ये कौन थे? ये जानना दिलचस्प है कि गुरुदेव अपने आध्यात्मिक विश्लेषण में वैज्ञानिक शोध को कैसे शामिल करते थे।
हाँ, वे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका काम आदतें बनने की प्रक्रिया पर था, और यही बात इस विश्लेषण को एक वैज्ञानिक आधार देती है। डॉक्टर हंटर का शोध कहता है कि हमारी जो मूल प्रवृत्तियां या पुरानी आदतें हैं, उनके खिलाफ कोई नया रास्ता बनाने के लिए लगातार,
बार बार
और कठोर प्रयास करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ दिन भी अभ्यास छोड़ दें तो मन फौरन अपनी पुरानी जंगली आदत की तरफ भाग जाता है।
ये तो कुछ वैसा ही है जैसे रोज सुबह उठकर जिम जाने की आदत डालना। शुरू में मन नहीं करता, शरीर पुराने आराम की तरफ भागता है, लेकिन कुछ हफ्तों की जबरदस्ती के बाद वही नई दिनचर्या बन जाती है।
बिल्कुल। तो क्या हमारे ऋषियों ने इसी साइकोलॉजी को हजारों साल पहले समझ लिया था?
लगता तो यही है।
इसीलिए उन्होंने नित्य उपासना, रोज के कर्मकांड और संध्या वंदन जैसे नियमों का विधान बनाया। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये हैबिट फॉर्मेशन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी।
वाह,
पूज्य गुरुदेव ने पतंग का अद्भुत उदाहरण दिया है।
पतंग का?
हाँ, जब तक पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोरी है और वो उसे लगातार साध रहा है, हवा का संतुलन बना रहा है, तभी तक पतंग आसमान में रहती है। जैसे उसने डोरी छोड़ी या ध्यान भटकाया
तो पतंग जमीन पर आ गिरती है, सारा प्रयत्न बेकार।
ठीक वैसे ही नित्य उपासना इस विश्वास की डोरियों को मजबूती से थामे रखने का रोज का अभ्यास है।
तो ये रोज का अभ्यास उस मानसिक अराजकता का सीधा इलाज है जिसकी बात हमने शुरू में की थी।
एकदम सटीक। अगर उपासना की आदत रूपी डोरी छूट जाए तो मन की पतंग वापस उसी अराजकता में गिर जाती है।
समझ गए।
गुरुदेव एक और उदाहरण देते हैं जो शायद और भी ज्यादा प्रभावशाली है।
बताइए।
एक जंगली पशु की कल्पना कीजिए। अगर आप उसे पकड़कर एक सोने के पिंजड़े में रख दें और उसे खाने के लिए मेवे और अंगूर दें, तो भी उसे वो अच्छा नहीं लगेगा।
वो बेचैन रहेगा।
हाँ, और वापस जंगल के कष्टों में लौटना चाहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव वही है। मनुष्य का मन भी उसी जंगली पशु की तरह है जो अपनी पुरानी बुरी आदतों की तरफ भागता है। नित्य उपासना का अभ्यास उसे अच्छाई के उस सोने के पिंजड़े में बनाए रखने की कोशिश है, जब तक कि उसे उसी की आदत न पड़ जाए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की प्रसन्नता का असल मतलब ईश्वर की कोई भावना नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलकर हमारे द्वारा पाया गया सुख और शांति है।
हाँ।
और ईश्वर की अप्रसन्नता का मतलब है उस रास्ते से भटकने के स्वाभाविक दुखद परिणाम।
बिल्कुल, ये कारण और परिणाम का सीधा सीधा विज्ञान है, जिसे बस एक भावनात्मक भाषा दी गई है। प्रसन्न होना का भावार्थ है सुख मिलना, और अप्रसन्न होना का भावार्थ है दुख मिलना।
ये तो बहुत ही मतलब सीधी और सरल व्याख्या है।
हाँ, ये एक मोटा हिसाब है जिसे समझने के लिए गहरे वाद विवाद की जरूरत नहीं। अगर हम इस भाव को समझ लें कि ईश्वर की उपासना से मनुष्य अपने पशु स्वभाव को नियंत्रित करके एक सुख शांति भरा जीवन जी सकता है, तो हम शास्त्र लिखने वालों की असली मंशा को समझ जाएंगे।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने ईश्वर की अवधारणा को चार पारंपरिक तत्वों से शुरू किया, और अब हम मनोविज्ञान, आदत निर्माण और सामाजिक व्यवस्था तक पहुंच गए हैं।
हाँ, तो ये स्पष्ट है कि पूज्य गुरुदेव के विचारों में ईश्वरवाद केवल पूजा पाठ या मान्यताओं का संग्रह नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही गहन और सुविकसित मनोवैज्ञानिक तंत्र है, एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित मानसिक व्यवस्था,
जिसे व्यक्ति के चरित्र को गढ़ने और समाज की नैतिकता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था।
बिल्कुल, इसका मूल सार यही है कि इन ईश्वरीय विश्वासों का निरंतर अभ्यास जरूरी है, ताकि धर्म के आचरण के लिए बनाई गई ये महत्वपूर्ण व्यवस्था टूटने ना पाए और समाज में अराजकता ना फैले।
यह चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। इसने ईश्वरवाद को पूजा घर के आले से निकालकर हमारे मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के केंद्र में रख दिया है। ये एक टूल है, एक सिस्टम है खुद को और समाज को बेहतर बनाने का।
और ये पूरी चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है।
क्या?
पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि ये मानसिक ढांचा समाज को नैतिक रूप से व्यवस्थित रखने के लिए उस समय बनाया गया था।
हाँ।
आज के आधुनिक युग में, जहां हमारे पास संविधान है, कानून है, पुलिस है, शिक्षा और मनोविज्ञान के नए नए तंत्र मौजूद हैं, इस प्राचीन मनोवैज्ञानिक व्यवस्था की आज क्या भूमिका है? क्या आज की नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे किसी नए रूप में समझने या अपनाने की जरूरत है?